नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अपने जीवन को बहुत खुशी में बनाना चाहते हैं, खुशी में देखना चाहते हैं, परिवार में एक दूसरे को हम खुश देखना चाहते हैं। लेकिन आज हमें बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज खुश रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। कारण क्या है कि खुश तो रहना चाहते हैं, एक दूसरे को खुश देखना भी चाहते हैं, लेकिन चेहरे को जब देखते हैं तो उदासी, निराशा, हताशा से भरा हुआ रहता है। आज खुश रहने वाले लोग कम होने के कारण एक दूसरे के अंदर दूरियां बढ़ गई है। खिला हुआ गुलाब सबको प्रिय लगते हैं, इसी तरह से अगर हमारा चेहरा खिला हुआ है तो हम सबको प्रिय लगते हैं, हमारे सामने लोग आना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
थैंक यू
भाई जी। हम आज चर्चा के माध्यम से जानना चाहते हैं कि संसार में अनेक लोग जब हम देखते हैं तो चेहरे में एक जो खुशी होना चाहिए वो खुशी दिखाई नहीं देती।
बिल्कुल, यदि आप कहीं बैठ जाएं और आने जाने वाले लोगों को देखें तो लगेगा किसी के चेहरे पर भी नूर नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ टेंशन लेकर चल रहा है, सिर पर कोई बोझ लेकर यात्रा कर रहा है और किसी के चेहरे से तो कुछ परेशानियां नजर आती हैं। दो व्यक्ति बात भी कर रहे हैं तो हंसी खुशी की बातें भी कहीं सुनाई देती हैं, पर थोड़ा मन मुटाव, थोड़ी खींचातान ये सब भी दिखाई देती है। परंतु हमें ये जानना चाहिए कि खुशी जीवन का बहुत बड़ा खजाना है। जैसे हम अपने और खजानों को महत्व देते हैं, भाई पैसा है, ज्वेलरी है, इवन अनाज भी है, दालें हैं, भोजन है, ये सब भी जरूरी चीजें हैं, इनको हम महत्व देते हैं। घर में सब्जी ना हो तो हम इंतजाम करते हैं, दूध ना हो तो इंतजाम करते हैं। ऐसे ही खुशी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन की। वो यदि हमारी जा रही है तो हमें सचेत अवश्य होना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग, हमें इस खजाने को गंवाना नहीं है। जैसे और तरह का बैंक बैलेंस हम बढ़ाते हैं, हमें इस बैंक बैलेंस को भी बहुत बढ़ाना है और ये खुशी दूसरों को भी खुशी प्रदान करेगी। देखिए, आप किसी के पास जाएं, आपका मूड ऑफ हो, वो व्यक्ति भला कैसे खुश होगा, और आप खिलखिलाते जाएं, मुस्कुराते जाएं, अगर उसका मूड ऑफ भी है वो भी फ्रेश हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में खुशी को बहुत महत्व दें और किसी भी छोटी मोटी बात के कारण इस खजाने को जाने न दें।
संजय भाई, आपसे हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में हम खुशी को किस तरह से परिभाषित करें, हमारे दर्शक कैसे जाने कि खुशी क्या चीज है।
खुशी के लिए यही देखा जाता है कि व्यक्ति को कुछ दिया जाए तो वो खुश हो जाता है, यदि उसका कुछ छीन जाता है तो वो दुखी हो जाता है। तो खुशी का मैं यही कहूंगा कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी खुशी को आधार बनाता है। वास्तव में खुशी का आधार तो हमारे अपने खुद के विचार हैं, खुद की कार्य क्षमता है, खुद का हमारा पुरुषार्थ है, मैं कहूंगा इसमें। क्योंकि जब तक हम कुछ मेहनत नहीं करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तब तक मनुष्य खुश नहीं हो सकता।
गीता बहन जी, आप खुशी को कैसे परिभाषित करेंगे?
मेरे हिसाब से तो खुशी एक ऐसा खजाना है जिसे हम जीत नहीं सकते, या जिसे हम वसीयत में प्राप्त नहीं कर सकते, या जिसे हम ताले में नहीं रख सकते, या जिसे हम छीन नहीं सकते। खुशी एक ऐसी उपज है जो हमारे जीवन के अंदर जितने मूल्य होंगे उतनी सुंदर इसकी फसल उगेगी अंदर से। हम क्या गलती कर रहे हैं कि खुशी को बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज मूड अपसेट है तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, ठीक है, खाने का स्वाद लिया, थोड़ा आउटिंग हुई, थोड़ी चेहरे पे खुशी आई, लेकिन वो तब तक ही जब तक आप बाहर रहे। फिर जैसे ही घर में आ गए खुशी फिर गुम, फिर वही विचार, वही संकल्प, वही समस्याएं, वही विघ्न हमारे चित्त पर अपना अंधकार बनाए रखते हैं। मूवी देखने चले गए, 3 घंटे हमारे बहुत अच्छे से कट गए, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हमने किया, लेकिन मूवी के बाद फिर अपसेट। तो खुशी जो स्थायी होनी चाहिए हमारे जीवन में, वो स्थायी खुशी हमें कहाँ मिलेगी। मुझे एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ रहा है। एक बूढ़ी दादी बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी। एक राहगीर मिले और कहा कि दादी आप क्या ढूंढ रहे हो, तो उसने कहा मेरी सुई गिर गई।
अच्छा।
सुई को ढूंढ रही हूँ। तो वो तो बहुत पतली सी, बहुत महीन सी, बारीक सी होती है, आपकी नजरें पहले ही कमजोर हो गई हैं, आप कैसे रात को उसे ढूंढ पाएंगी। बोला बेटा सुई तो अंदर गिरी थी कमरे में, वहां लाइट नहीं है, वहां अंधेरा है, इसीलिए मैं कमरे से बाहर निकलकर यहां आई, क्योंकि यहां रोड पर लाइट है, तो मैंने सोचा कि शायद यहां प्रकाश में मेरी सुई मिल जाएगी। उसने ऐसा सोचा कि प्रकाश में सुई मिल जाएगी।
सुई अंदर गिरी,
सुई अंदर थी जहां अंधेरा था। यही हाल हम सबका हो गया है कि जैसे ही हमारे मन में अज्ञान का अंधेरा आया, वहां हमारी खुशी गुम हो गई और हम उसे बाहर जो संसार की चकादोक है, चमक दमक है, उसमें हम उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां वो हमें मिलेगी वहां हमारी नजर नहीं जा रही है।
बिल्कुल।
एक्चुअली हमें अपने मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करना होगा, तो जो मेरे छुपे हुए खजाने हैं, चाहे वो खुशी है, शांति है, या मेरी शक्तियां हैं, या मेरे अंदर मेरे छुपे हुए टैलेंट्स हैं, वो मुझे वही मिलेंगे, वो बाहर नहीं मिलेंगे।
आज लोग जो है खुशी के लिए बहुत तलाश कर रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, जिसे सुई का बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि सुई अंदर गिरी है लेकिन उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। आज मनुष्य जो है आज जो कुछ भी कर रहा है आखिर खुशी के लिए ही कर रहा है। किसी से पूछो तो कहते हैं हमारा जीवन कैसा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर से कह देते हैं कि खुश हैं, लेकिन जब अंदर की बात बताएंगे तो सच में अंदर से दुखी रहते हैं। कैसे आखिर इसको अंदर, जैसे गीता मैंने बताया कि ज्ञान के माध्यम से हम खुश रह सकते हैं।
मुझे भी एक ऐसी सच्ची घटना याद आ गई, ये बिल्कुल सत्य है।
जी, जी, जी।
मुझे एक बार मिलना हुआ मुंबई की 10 बहुत साहूकार बहनों से। ये सभी बहनें इतनी साहूकार थी जब मुझे इन्होंने बुलाया और मैंने पूछा कि कैसे आप लोगों ने मुझे याद किया है, तो बोलने लगी हमारे पास इतना पैसा है कि हमें पता ही नहीं कितना है और हमें रोज घर खर्च के लिए 50,000 मिलते हैं, रोज के केवल घर खर्च के लिए। अब हम रोज क्या लाएं, घर को स्टोर तो हमें बना नहीं देना है, आवश्यक चीज ले आते हैं, लेकिन हमें अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हें कुछ चाहिए। अब हम सोचते हैं कुछ चाहिए तो वे बाजार से ले आएंगे, पैसा तो रोज बहुत मिलता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें क्या चाहिए, तो एक आंतरिक खुशी का अभाव हमें फील होता है जीवन में। तो हमने आपको इसलिए याद किया है कि आप हमें बताओ हमें क्या चाहिए। मैंने कहा वाह, चाहना आपकी, और मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, फिर भी मैंने कहा मुझे समझ में आ गया आपको क्या चाहिए। मनुष्य धन में, साधनों में, मान सम्मान में, पद पोजीशन में, जीवन की सफलता में खुशी ढूंढ रहा है, और नो डाउट जब ये चीजें मिलती हैं तो खुशी तो प्राप्त होती है, भले वो थोड़ी होती हो या ज्यादा होती हो, क्षणिक होती हो या अल्पकाल होती हो। मैंने कहा देखिए आप सभी को यहाँ आप हमारे पास आए हैं, बहुत अच्छा ये सद्विवेक मिलेगा। तो हम कौन हैं? आज तक जो हम अपने को ये देह मानते आए, जो हमें दिखता है और जो चीजें हमें दिखती हैं ये मेरी हैं, उनमें हम खुशी शांति सब कुछ ढूंढते आए, यहाँ आपको पता चलेगा आप ये नहीं हो। और ये जो सब चीजें हैं ये तो विनाशी हैं, साधन मात्र हैं, भोजन है आपकी भूख को तृप्त करने के लिए, ठीक है उसका स्वाद भी आता है, हम आनंदित भी होते हैं, खुश भी होते हैं और हमारी भूख तृप्त भी होती है। परंतु जब तक आपने अपने को नहीं जाना तो वो जो वास्तविक भूख है अंदर की वो तृप्त नहीं होगी। तो बोलने लगी वो क्या है? मैंने कहा देखो आप सभी आत्माएं हो, रूह हैं हम सब, आपको ये यहाँ विस्तार से ज्ञान मिलेगा, और आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियां, ये खो गई हैं। अब ये आत्मा के असली खजाने हैं, ये तो भाई ये खजाने हैं जो केवल साधन हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं, लेकिन आत्मा के ये आंतरिक खजाने हैं। जब तक आपको सद्ज्ञान नहीं मिलेगा मन भटकता रहेगा, खुशी होगी नहीं। जब तक आप प्रेम स्वरूप नहीं बनेंगे, आपके जीवन में जो संबंध हैं दूसरों से वो बहुत मधुर नहीं होंगे, खुशी चली जाएगी, आपको अतृप्ति महसूस होगी, आप शांति आपका बहुत बड़ा खजाना है, वो आपने खो दी है, तो स्थूल खजाना आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। पवित्रता आपकी मूल चीज है, मूल प्रकृति है आपकी। अब उसको छोड़कर मनुष्य विकारों की ओर चला गया है, उसमें खुशी शांति ढूंढ रहा है, वहां भी उसको ये नहीं मिलता है। तो ये जो आत्मा की सातों क्वालिटीज हैं, जो हमारी असली चीज है, जो हमारा असली खजाना है, उसको जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें सच्ची खुशी शांति ये सब मिलेगा नहीं। तो सत्य यही है कि खुशी हम बाह्य चीजों में ढूंढ रहे हैं। दिवाली पर बिजली की बहुत लाइट हो जाती है, देखते ही मन खुश हो जाता है, लेकिन ये बाह्य खुशी है। बच्चे को एक अच्छा सा खिलौना दे दिया जाए, वो रो रहा है, वो खुश हो जाता है, ये बाह्य खुशी है। किसी गृहिणी को अच्छी कोई ज्वेलरी दे दी जाए, उसका चेहरा खिल जाता है, ये बाह्य खुशी है। मुझे एक बात और याद आ रही है जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, है तो बड़ी हंसी खुशी की बात कि जो मनुष्य बहुत खुश रहता है ना, उसका भोजन अच्छा हजम होता है, और जो इरिटेट रहता है सदा, उसको उसका हाजमा खराब हो जाता है, इंडाइजेशन सदा ही बना रहेगा। आम कहावत है हमारे देश में, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जिसको खुशी है उसको भूख सताएगी नहीं, ठीक है भूख तो लगेगी पर सताएगी नहीं, तंग नहीं करेगी। और हम सब जानते हैं जिस घर में खुशी का माहौल हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ जीवन जीने का मन करता है। इसलिए मैं पुनः दोहराऊंगा, ये बहुत आवश्यक चीज है जीवन की। खुशी के बिना तो जीवन जैसे निर्जीव है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।
जैसे भाई जी आपने बहुत सुंदर बात बताया कि वास्तव में आंतरिक बात है, ये बाह्य जो आज ढूंढ रहे हैं वास्तव में इसका कोई कनेक्शन नहीं है खुशी का। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे संजय भाई?
जिस प्रकार व्यक्ति की आज दिनचर्या हो गई है, उसको जब हम देखते हैं तो जो दिनचर्या ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की खुशी भी गुम हो जाती है। 100 साल यदि हम पहले जाते हैं तो देखा जाता है कि उस समय हर व्यक्ति खुशी में ही रहता था, ज्यादा उनके पास दुख और अशांति नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी दिनचर्या थी। साधनों ने आज दिनचर्या को ऐसा बना दिया है, उनके प्रभाव में आकर हमारी खुशी गुम हो गई। हम खुशी को साधनों में ढूंढ रहे हैं। वास्तव में साधन एक थोड़े समय के लिए हमें खुशी देते हैं जरूर, क्योंकि हमें कोई चीज से बात करनी है, किसी से संपर्क करना है तो हम उसका यूज करें, लेकिन उसके बाद हमारी यात्रा यहाँ तक समाप्त नहीं होती। इसके बीच में जो खुशी है, खुशी को लेते हुए हमें इस सफर में आगे बढ़ना है।
जी 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 जी। गीताबन, जो संजय भाई बता रहे हैं उसके ऊपर ही थोड़ा और अपना विचार आप रख सकते हैं।
जैसे भी संजय भाई बता रहे थे कि लोग साधनों में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और साधनों को प्राप्त करने के लिए खुशी गायब हो रही है। एक टेंशन रहता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए चाहिए चाहिए, नींद भी नहीं आती, चाहे कैसे भी चाहिए, कुछ तो इसके लिए गलत काम करने से भी नहीं चुकते क्योंकि चाहिए। मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे एक जानकार व्यक्ति, उसकी बड़ी वंडरफुल कहानी है। सारी उम्र उसको चाहिए चाहिए करते हो गया, सब कुछ मिल भी रहा है लेकिन जीवन में खुशी नहीं है। जब वो यंग एज में थे तो उनका बहुत बड़ा सपना था कि मेरा अपना खुद का घर हो। इतनी मेहनत की सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, बस पैसा लाऊं, कैसे भी कमाऊं, कैसे भी घर बनाऊं। अच्छा, अब उसके पास बहुत सुंदर घर है। फिर दूसरी टेंशन पैदा हो गई, घर में प्रवेश करते ही दूसरी टेंशन पैदा हो गई, मेरे बेटे की अच्छी सी जॉब होनी चाहिए। अब उसके लिए भिड़ गया, यहां पूछ उससे पूछ, यहां जा वहां जा, रातों को नींद नहीं, बस मुझे एक ही टेंशन है, मेरे बेटे की जॉब लग जाए। अब बेटे की जॉब लग गई और बहुत अच्छी लग गई, जैसा वो चाहता था। अब तीसरी टेंशन क्या, इसकी शादी हो जाए, अब मुझे मेरे अनुसार लड़की मिले जो घर में बहू बन करके आए, इस घर परिवार को संभाले, वो भी हो गई। अब चौथी टेंशन क्या, मुझे पोता हो जाए, अब फिर पोते की टेंशन। तो ये हमारी जो इच्छाएं हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हमारी खुशी को इस तरह से खा जाती है जैसे एक घुन किसी दाने को, अनाज को खा करके खत्म कर देता है। हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकता ना बनने दें। इच्छाएं पूरी करो, उसके लिए अच्छा प्रयास करो, सोच समझ करके काम करो, परंतु खुशी अपनी जगह है और इच्छाएं अपनी जगह है। जब हम पर इच्छाएं हावी हो जाती हैं, तब कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी से कोसों दूर चले जाते हैं।
आदमी अपनी इच्छाओं के कारण पूरा उम्र बिता देता है। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो सोचता है कि मेरे को अच्छी नौकरी लग जाए, उसके बाद और इच्छा बढ़ जाती है, जैसे बहुत सुंदर उदाहरण गीता बहन ने बताया। कि वास्तव में फिर आखिर इसका अंत क्या है?
देखिए, मैं भी सोच रहा था जी कि बच्चे को बच्चा पैदा हो गया, नहीं समस्या कि बच्चा पढ़ता नहीं है।
जी 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 जी,
बच्चा तो चंचल हो गया है, बहुत सारा अपने साथियों से मारपीट करता है, क्योंकि मेरे पास माताएं ये समस्याएं लेकर आती रहती है। तो ये सत्य है कि ये जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, ये अंतहीन है, इनका कहीं एंड दिखाई नहीं देता। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी शुरुआत की थी कि दुखों का कारण ये मनुष्य की इच्छाएं हैं। श्रेष्ठ इच्छा होना बहुत अच्छी चीज है, और जब इच्छा मनुष्य की पूर्ण हो जाती है तब उसको खुशी भी रहती है, इसकी समाप्ति भी होती है। देखिए, हम लोगों ने भी जीवन का एक लंबा सफर तय किया है
जी।
इच्छाएं हमारे मन में भी होती थी, जिस मनुष्य का जितना लेवल है वैसे उसकी इच्छाएं होती हैं। पढ़ते थे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की इच्छा, फिर भाई पहनने को, खाने को, रहने को ठीक ठीक हो, इतनी इच्छाएं। परंतु तो जब ईश्वरीय ज्ञान लिया, जब आत्मा की अनुभूति हो गई, जब परमात्म मिलन के सुख प्राप्त हो गए, तो इच्छाएं कम होने लगी। तो यहां भी हमें ये सिखाया जाता था, इच्छाओं को कम करते चलो तो समस्याएं भी कम हो जाएंगी। और आखिर परमात्मा के द्वारा एक सुंदर लक्ष्य दिया गया, तुम्हें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, अर्थात ऐसा जीवन बनाना है जिसमें इच्छा बस हो ही ना, वो भूल ही जाए कि कुछ हमें चाहिए भी क्या। मैंने देखा ये काम है तो कठिन, लेकिन एक दूसरी अनुभूति हुई, जब ईश्वरीय प्राप्तियां होने लगी तो सांसारिक इच्छाएं छूटने लगी, दबने नहीं लगी, छूटने लगी आपकी, क्योंकि उनसे ज्यादा रस, उनसे ज्यादा प्राप्तियां ईश्वरीय अनुभूतियों में हो रही थी। तो मैं अपने को देखता हूं कि जैसे इच्छाएं खत्म ही हो गई हैं, इन इच्छाओं की समाप्ति वहीं हो जाती है जहां ईश्वरीय सुख से हमारा मन और बुद्धि भरपूर हो जाता है, तृप्त हो जाती है ना आत्मा, मन तृप्त हो जाता है, तो लगता है इस संसार से क्या चाहिए। भोजन जैसा मिल रहा वो उदर पूर्ति के लिए है, रहन सहन जैसा मिल रहा वो बहुत अच्छा है, हमारे जैसा रहन सहन तो किसी को है ही नहीं, पहाड़ियों के बीच में, शांति स्थान में, योगियों के मध्य में, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस में। तो ईश्वरीय अनुभूति ही इच्छाओं का एंड कर देती है।
भाई जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि आप तो राजयोग का अभ्यास करते हैं, इतने सालों से आप तपस्वी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जो नौकरी धंधा वाले हैं, उनकी अनेक इच्छाएं हैं। अभी आपने बताया कि मेरी इच्छा तो कम हो गई, लेकिन लोगों की इच्छा तो कम नहीं हुई है, वो अपनी इच्छा को कैसे कम करें?
क्योंकि संसार में कंपटीशन बहुत है, एक के बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं तो दूसरा भी नेचुरली चाहेगा मेरे भी अच्छे पढ़े, एक के पास अच्छी कार आ गई वो भी चाहेगा यार हमारी तो हल्की सल्की है, और भी मकान दुकान सब चीजों में कंपटीशन बहुत है। इसलिए इच्छाओं का बहुत होना बड़ा स्वाभाविक सा है, लेकिन अगर गृहस्थ ईश्वरीय मार्ग पे कदम रख देते हैं, अगर वो परमात्म शक्ति को पहचान कर उससे अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं, तो पहले तो इन चीजों का महत्व नहीं रहेगा, भाई उसकी कार बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, 20 लाख की है, मेरी तो 5 लाख की है, फिर उसे लगेगा नहीं ये कार तो केवल साधन है, हमें कहीं जाना है उसके लिए इसकी उपयोगिता है, बाकी अच्छी और बुरी में तो कोई भेद है नहीं, ऐसे वो चलेगी ऐसे ये चलेगी, वो भी हमें 1 घंटे वहां पहुंचाएगी, चलो हमारी 1 घंटा 10 मिनट ले लेगी, कोई बात नहीं। तो अगर ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य ले लेता है तो उसे तो तृप्ति हो जाती है, अब दूसरी बात ये भी होती है जब मनुष्य की स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है तो धन संपदा सुख साधन भी सहज प्राप्त होने लगते हैं।
संजय भाई, जैसे भाई जी ने बताया कि हमारे जीवन में साधन कितने भी बढ़ जाए, लेकिन साधन के साथ साथ हमारी साधना हो, तो साधना कितना मदद करता है हमारे जीवन में खुशी प्रदान करने के लिए?
जब व्यक्ति साधना करता है तो जरूर उसके पास ऐसे सकारात्मक विचार होते हैं, जिन विचारों के माध्यम से उसकी साधना एक रस होती जाती है, और एक रस साधना वाला व्यक्ति उसका चित्त इतना शांत हो जाता है कि उसको बाहर से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती,
कम हो जाती
है। और ये भी एक संकल्प हमेशा अपने पास रखना चाहिए कि खुशी यात्रा के एंड में नहीं है, खुशी यात्रा में है। माना खुशी से हम कर्म करें
जी।
खुशी के लिए कर्म नहीं करें, खुशी खुशी हर कर्म करें तो खुशी प्राप्त होगी।
अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि जितना हम खुश होकर प्रयास करेंगे उतनी वो चीज हमारे अति नजदीक आती जाएंगे। हम जब बोझिल होकर किसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो हमसे दूरी बना लेते हैं, हमारे समीप होते हुए भी हमें वो बहुत दूर नजर आते क्योंकि बोझ है। अब आप देखिए, आपको रेलवे स्टेशन पर जाना है, आपके पास 2-3 अटैची है, बैग है, आपकी ट्रेन की सीटी बच गई है। अगर आप हल्के होंगे तो बहुत तेज दौड़ करके आप अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं, मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि सर पे बोझ है, हाथों में बोझ है, आप दौड़ना भी चाहेंगे, आप में सामर्थ्य है दौड़ने की, लेकिन वो बोझ आपको दौड़ने नहीं दे रहा, आपके जो बढ़ते कदम है उनको कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे मन पर बोझ होता है किसी भी प्रकार का, तो हम मंजिल हमारे अति समीप होती है लेकिन हमारे कदम धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, वहां तक पहुंचने में हमें देरी लगती है। तो किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो खुश रहिए, खुश होकर के प्रयास कीजिए, तो वो चीज आपको अपने पास अपने नजदीक महसूस होगी आती हुई।
भाजी जैसे गीतवन बता रही कि हमारे जीवन में हर कर्म के साथ खुशी जुड़ा रहे, वास्तव में हर व्यक्ति तो चाहता है मैं खुश रहूं, तो सुबह उठ करके भी सोचते हैं कि भगवान के सामने या अपने इष्ट देव देवी के सामने जब वो हाथ जोड़ के बैठता है या पूजा पाठ करता है तो उस समय भी यही सोचता है कि मेरा जीवन खुश रहे। लेकिन जैसे अभी चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि खुश रह करके कार्य करें, खुशी के लिए कार्य तो करना ही है लेकिन साथ साथ हमारा खुशी सदैव चलता रहे उसके लिए क्या अभ्यास करें।
हाँ, बहुत ही सुंदर बात है, और इस संसार में हर प्राणी को ये सीखना ही चाहिए कि जो यात्रा है, बिगनिंग हुई, अब एंड तो खुशी में होगा ही। हम सब जगह देख सकते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी ड्राइविंग को, खुशी खुशी से कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ होगी नहीं, स्पीड भी कंट्रोल में रहेगी, ब्रेक भी ठीक लगेगा, एक्सीडेंट भी कहीं नहीं होगा। बाइक चलाने वालों को मैं यही कहूंगा, युवकों को एंजॉय करें, बहुत तेज चला रहे, कट मार रहे हैं तो ध्यान रहेगा ना पूरा
जी,
तो
जी,
जो
जी।
असली आनंद है, भले उसको लगे कि मैं तेज चला रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, पर जो असली आंतरिक आनंद है वो नहीं होगा। ऐसे ही गृहिणी माताएं अपने घरों में भोजन बना रही हैं, वो जल्दी करें, टेंशन में बनाएं, अभी ऑफिस जाना है, हमारे पास तो एक ही घंटा बचा है, इसमें हमें सब कुछ काम करके जाना, इस टेंशन के साथ भोजन नहीं बनाएंगे तो खुशी से भोजन बनाएं, तो खुशी के वाइब्रेशंस भोजन में भरें, प्रेम भर दें उसमें, ये औषधि बन जाएगी सबके लिए। और भी जो कर्म है, एक व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर रहा है, आईटी में एक व्यक्ति काम करता है, इंजीनियर है, अब उसको मान लो 8 घंटे कंप्यूटर के साथ बैठकर काम करना है। अभी लोग 1-2 घंटे में बोर होने लगते हैं, टेंस होने लगते हैं, लेकिन वो उस कार्य का को एंजॉय करें कि वाह, प्रभु को धन्यवाद देते रहे, कितना अच्छा काम दिया है तुमने मुझे, 2 बुद्धि साथ जुड़ गई, मैं भी और ये कंप्यूटर भी तो बहुत बुद्धिमान है और सब सहज हो रहा है, देखो मुझे कहीं धूप में नहीं बैठना पड़ रहा है, मैं एसी में बैठा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ कार्य करने के लिए। उस ऐसे संकल्प क्रिएट करे कि कार्य को एंजॉय भी करे और खुशी खुशी से काम को आगे बढ़ाए। ऐसे और भी बहुत सारे जो दुनिया में काम है, एक बिजनेसमैन है, कपड़े का व्यापारी है, वो अपने दुकान में बैठा है, ग्राहक आ रहे हैं, कोई कपड़ा देखकर जा रहा है, नहीं ले रहा है, कोई 15 मिनट कपड़े देखने में लगा देता है लेकिन चुपचाप चला जाता है, तो इसका मूड तो थोड़ा बिगड़ेगा, लेकिन ये मान करके यही हमारा कार्य है, इसी तरह तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, इस कार्य को एंजॉय करे, खुशी खुशी से दिखाए। अगर उसने 10 स्थान देखे हैं तो हाँ जी ये भी देखो, ये भी देखो, देखो ये आपका कितना अच्छा, इतना खुशी से बात करे कि लेने वाला भी खुश हो जाए, तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारी बीच की यात्रा है, इसमें हम खुशी को जोड़ दें तो अंत तो खुशी से भरपूर होगा ही।
आप तीनों स्टूडियो में आए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे दर्शकों के लिए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि वास्तव में खुशी का क्या महत्व है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म का एंजॉय करना, उसको खुशी के साथ करना, ये कैसे किया जाए, इसके भी सुंदर सुंदर विचार आज हमारे सामने रखे। हम ये चाहते हैं कि आप सब अपने कर्म तो सभी करें, लेकिन कर्म के साथ साथ खुशी को जोड़ें, खुशी अपने जीवन से गुम न होने दें। सुबह से ही सोच लें कि आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है। आप प्रयोग करके देखें, आपका परिवार, आपका समाज एक नए दिशा की ओर अग्रसर करेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्यारे दर्शकों, इस चर्चा के माध्यम से आप सबका जीवन आनंदमय और खुशहाल तरीके से बीते। आज के लिए बस इतना है, फिर पुनः मिलेंगे। नमस्कार।